जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यशोदानंदन जय ब्रज जनरंजन जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर वनचारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। श्रीमद भगवत गीता की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। अच्छा मृगा मृदंग अच्छा बजाय बढ़िया। जो वाद्य बजाते हैं उनका हारमोनियम भी अच्छा बजाए। जो वाद्य बजाते हैं उनका उद्देश्य होना चाहिए जो कीर्तन कर रहे हैं उनका साथ देना और हरि नाम की प्रधानता होनी चाहिए वाद्य की नहीं। तो जिस गति से जिस ताल से जो कीर्तन ही कर रहे हैं उसी तरह से बजाना चाहिए। कभी कभी मृदंग वाले या दूसरे कोई खींच लेते हैं गाने वाले को ज़्यादा जोर जल्दी 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 बजाए कि फिर कीर्तन करने वाले को भी जल्दी जल्दी गाना पड़ता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद् भगवद् गीता दूसरा अध्याय गीता का सार श्लोक संख्या 27। jatasya
hi
dhruvah mrityuh dhruvam janma mrityasya cha tasma aparihārye arthe na tvam shochitum arhasi jatasya hi dhruvo mrityur dhruvam janma mrityasya cha tasmada parihārye arthe natvam shochitum arhasi jatasya hi dhruvo mrityuh dhruvam janma mrityasya cha tasmada parihārye arthe natvam shochitum arhasi jatasya hi dhruvo mrityuh dhruvam janma mrityasya cha tasmada parihārye arthe natvam shochitum arhasi Jatasya hi dhruvo mrityuh dhruvam janma mrityasya cha tasmada parihārye arthe natvam shochitum arhasi jatasya hi dhruvo mrityuh dhruvam janma mrityasya cha tasmada parihārye arthe natvam shochitum arhasi jatasya hi dhruvo mrityuh dhruvam janma mrityasya cha tasmada parihārye arthe natvam shochitum arhasi mataji jatasya hi dhruvo mrityuh dhruvam janma mrityasya cha tasmada parihārye arthe natvam shochitum arhasi jatasya hi dhruvo mrityuh dhruvam janma mrityasya cha tasmada parihārye arthe natvam shochitum arhasi jatasya janma lene vale ki hi निश्चय ही ध्रुवः तथ्य है मृत्यु हो मृत्यु ध्रुवम ध्रुवम यह भी तथ्य है जन्म जन्म मृतस्य मृत प्राणी का च भी तस्मात् अतः अपरिहार्ये जिससे बचा न जा सके उसका अर्थे के विषय में न नहीं त्वम तुम शोचितुम शोक करने के लिए अर्हसी योग्य हो। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तात्पर्य, मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध, वध तथा युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल क्यों था? वह विधि कानून को भंग नहीं करना चाहता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसे उन पाप कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे जिससे वह अत्यंत भयभीत था। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता था, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना होगा। अनुवाद को दोहराइए।
जिसने जन्म लिया है
उसकी मृत्यु निश्चित है
और मृत्यु के पश्चात
पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदार्थिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निधिनामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप में से कितने भक्त कभी कभी चिंता करते हैं? हाथ ऊपर कीजिए। तो जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया है इसका मतलब है कि आप कभी कभी नहीं हर समय चिंता करते हैं। यह संसार चिंता का सागर है, भगवान का धाम चिंतामणि धाम है। जैसे एक बार हम आपसे पहले बता रहे थे, वो चिंतामणि धाम है, ये चिंता मनी मनी पैसे का धाम है। यहाँ सब पैसे के बारे में चिंता करते रहते हैं। तो चिंता स्वाभाविक है बद्ध जीव के लिए। यह संसार में रहते हुए हमें तरह तरह के कार्य करने पड़ते हैं, अनिवार्य हैं थोड़े बहुत कार्य, हमारे कर्तव्य होते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं कह सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा नास्तिक क्यों न हो, कि उसके जीवन में कोई कर्तव्य नहीं है। यहां तक कि जो जानवर हैं वो भी समझते हैं कि उनके कोई कर्तव्य होते हैं, उनके भी कोई जिम्मेदारियां होती हैं। तो फिर मनुष्यों के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? तो कर्तव्यों का पालन करते करते ऐसा नहीं है कि हर बार बिल्कुल आसानी से हम ये सब कर सकते हैं। कर्तव्यों का पालन करते करते बहुत सारे असुविधाएं और संकटों का सामना करना पड़ता है। आप में से अधिकतर भक्त गृहस्थ हैं, आपका परिवार है, व्यवसाय है, नौकरी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। अब इन सबको संभालना क्या महत्वपूर्ण नहीं है? ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है आपके, परंतु इन कर्तव्यों का पालन करते करते क्या चिंता नहीं होती? कैसे व्यवसाय को संभाला जाए, कितनी समस्याएं आती हैं, परिवार को संभालने में कितनी समस्याएं, व्यवसाय में कितनी समस्याएं, समाज में रिश्तेदारों में कितनी समस्याएं, तो करना पड़ता है हमें। हाँ, ऐसे झूठे कर्तव्यों को हमारे सर पे लाके रख के कोई फायदा नहीं। बिना वजह कर्तव्यों को संसार में बढ़ाते जाना, इससे कोई मतलब नहीं है, कोई लाभ नहीं है। ते पीछ तंत्र्या उरुदाम ने पत्था, जब हम इस भौतिक जगत में प्रकृति के कड़े नियम से बंधे हुए हैं, भारम उद्वहतो विमूढ़ान, प्रहलाद महाराज कहते भागवत के बिना विजय से हमारे भौतिक कर्तव्यों को, भौतिक जिम्मेदारियों को हम बढ़ाते जाते हैं प्रगति के नाम पर, या एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाम पर, या पलायनवाद का शिकार नहीं है हम इसके बारे में कुछ बोलने के लिए कि हम संसार का सामना करते हैं। आप जैसे अध्यात्मवादियों की तरह संसार से भाग के नहीं जाते हैं, हम पलायनवाद नहीं करते हैं, तो इसलिए लोग बढ़ाए जाते हैं भारम उद्वहतो विमूढ़ान, परंतु ऐसे केवल हमारे परेशानियां हम बढ़ाते जाते हैं। वैसे भी जीवन के संकट कोई कम नहीं है, और उसके ऊपर हम और बढ़ाते जाएं, ये एक झूठ की जो कल्पना है कि ये प्रगति है, इससे सुख मिलेगा, सुख नहीं मिलता है, केवल दुख ही मिलता है, कष्ट ही बढ़ता है। परंतु जितने भी हम कर्तव्यों को कम करें, जितने हमारे आवश्यक कर्तव्य हैं उतने ही हम निभाएं, फिर भी आसान नहीं है, ये अपरिहार्य है। अपरिहार्य अर्थात जिसको टाला नहीं जा सकता, जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको करना ही होगा हमें। अब जो गृहस्थ हैं तो अभी जिम्मेदारियां हैं, परिवार है, आप नहीं बोल सकते कि हम जिम्मेदारी का पालन नहीं करना चाहिए क्योंकि हम भक्त बन गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कष्ट आते हैं और इसलिए चिंताएं भी बढ़ती हैं। तो स्वाभाविक है कि इस जगत में व्यक्ति चिंता करते रहेगा, तो बद्ध जीव का ये एक स्वभाव हो जाता है चिंता करना। और जब कोई चिंता नहीं होती है तो चिंता ये होती है कि चिंता क्यों नहीं है, क्योंकि चिंता करने की इतनी आदत हो गई होती है कि जब चिंता नहीं होती हम सोचते हैं क्या हो गया, कुछ तो कारण ढूंढते हैं चिंता करने के लिए। और जैसी आयु बढ़ती रहती है चिंताएं बढ़ती हैं। भागवत में कहा गया है ना, कि जो बीत चुका है उसके बारे में हम शोक करते हैं, जो वर्तमान काल में हो रहा है उसके प्रति हम असंतुष्ट हैं, और जो भविष्य में होने वाला है जिसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है उसके बारे में हम चिंतित रहते हैं। तो हर चीज में चिंता चिंता चिंता। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था, बहुत चिंता करता था। तो उसने सोचा कि चिंता का उपाय क्या है मेरे पास। वो यहां गए वहां गए, डॉक्टर के पास गए, तरह तरह की चीजें देखी, लेकिन चिंता नहीं जा रही थी मन से। तो फिर एक भक्त के पास आए, राधा गोकुलानंद मंदिर के ही भक्त थे कोई, तो उनके पास आए कि मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्या करें। तो कहा, चिंता से मुक्त होना है तो आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए, भगवत गीता समझना चाहिए, अपने जीवन में उतारना चाहिए, फिर आपकी चिंता सब दूर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मेरे पास समय नहीं, क्योंकि मैं इतना व्यस्त हूं, इतने काम मुझे हैं, इतने कर्तव्य हैं, तो जल्दी जल्दी से मुझे समझाओ। क्या जल्दी जल्दी से नहीं होगा ऐसे, आपको भगवत गीता पढ़ना है, 18 अध्याय है, तो एक एक अध्याय पढ़ाते पढ़ाते आपको समझाते समय लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 महीने तो कम से कम लग जाएंगे, आपको आना चाहिए। अरे 3 महीने किसके पास है, कहाँ 3 महीने हमारे पास नहीं है, कोई छोटा रास्ता नहीं मिल सकता है इसमें से कोई। देखो 18 अध्याय तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम 6 अध्याय तो सिखा सकते हैं मूल। कितना समय लगेगा उसके लिए, तो कम से कम 1 महीना तो लगेगा। अरे नहीं नहीं इतना समय हमारे पास नहीं है। तो क्या 1 अध्याय से काम नहीं चलेगा? ठीक है चलो 18 अध्याय समझा लें। ठीक है कितना समय लगेगा उसके लिए? उसके लिए कम से कम देखो 1 हफ्ता तो लगेगा ना, जब अच्छी तरह से समझाना है। अरे नहीं नहीं 1 हफ्ता किसके पास है, कहाँ इतना समय होगा हमारे पास कि 1 अध्याय सुने हम बैठ के। अरे तो फिर चलो कम से कम 1 श्लोक तो सुनो, ये सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त धर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण को ग्रहण करो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं, मा शुच। तो ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ठीक है ये 1 श्लोक समझाने के लिए कितना समय लगेगा आपको? 1 दिन लगा, 1 दिन? ठीक है चलो 1 घंटे में समझाएंगे आपको जी। अरे 1 घंटा 1 शब्द नहीं समझा सकते? बोले ठीक है मा शुचः, डरो नहीं, चलो इतना ही है भगवद गीता का सार, अभी चिंता नहीं करो, अभी केवल चिंता नहीं करो, इतना कहना था तो वो सब लोग कह चुके हैं मुझे। बोला तो ये तो बात है, केवल आपको चिंता से मुक्त होना है, लेकिन भगवत गीता सुनने के लिए पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, समय नहीं देंगे तो फिर कैसे होगा? तो फिर किसी फिर वो मान गए। तो कभी कभी जब किसी रोगी को जब रोग होता है ना, उसका उपाय वो लेने के लिए तैयार नहीं होता है तो क्या किया जाए? हमेशा हम छोटे रास्ते कोई ढूंढते हैं, जल्दी से जल्दी कोई उपाय निकले और रोग से मुक्त हो जाएं, परंतु ऐसे नहीं होता है। जो उपाय होता है प्रकृति के नियमों के अनुसार उसको समय लगता है, एकदम से कोई चीज चाहिए तो नहीं हो सकता है। तो किसी व्यक्ति को, जैसे वो आदमी था, उसे चिंता से मुक्त होना था तो इसी आध्यात्मिक रास्ते पे आना चाहिए। जब वो भक्ति करेगा, भगवत गीता का सार समझेगा, तब मा शुचः, फिर ये सार्थक हो जाएगा उसके जीवन में, उसके मन से जो भय है चिंता है वो सब चले जाएगा। फिर वो व्यक्ति तैयार हो गया और फिर राधा गोकुलानंद मंदिर में आते रहा। पता नहीं वो यहाँ है कि नहीं है अभी, नहीं ऐसे मजाक कर रहा था, ऐसे कहानी बता रहा, लेकिन इसमें सीखने लायक चीज क्या है कि चिंता का उपाय चिंता नहीं है, समस्याओं का उपाय चिंता नहीं है, समस्याएं सबके जीवन में आएंगे, हाथ के ऊपर हाथ रख के, या ठीक है आलसी नहीं भी रहे लेकिन क्रियाशील रहे, चलो ये उपाय ढूंढेंगे वो उपाय ढूंढेंगे, भाग दौड़ करके केवल समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता है। हाँ, हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में क्रियाशील तो होना है समस्याओं का हल निकालने के लिए, ऐसे ही बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। फिर भी केवल इन कार्यों से समाधान नहीं होगा। जब तक हम आध्यात्मिक चेतना का आश्रय नहीं ग्रहण करेंगे तब तक चिंता से मुक्त हम नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम अधिक से अधिक भगवद गीता, श्रीमद् भागवत ऐसे ग्रंथों को पढ़ें नित्य नियम से, इनका श्रवण करें और फिर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। चिंताओं के बारे में चिंतन करने से, समस्याओं के बारे में चिंतन करने से कुछ नहीं होगा। एक बार एक अध्यापक अपने छात्रों से चर्चा कर रहे थे, 12वीं की परीक्षा आने वाली थी और सारे विद्यार्थी बहुत ही चिंतित थे। आजकल के जमाने में वो चिंतित नहीं रहते, माता पिता ज्यादा चिंतित हैं, बच्चे तो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो खैर, तो बच्चे बहुत चिंतित थे, बहुत तनाव में थे। तो अध्यापक ने देखा कि सारे विद्यार्थी इतने चिंतित हैं, इतने तनाव में हैं, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने एक बार उनको बुलाया और कहा कि देखो, ये है एक पात्र है, इसमें क्या है, इसमें जल है, तो इसका वजन कितना है। तो किसी ने कहा, अच्छा आपसे पूछूंगा, ये इसका वजन क्या हो सकता है, 200 ग्राम 300 ग्राम जो भी, अभी मैं इसको पकड़ रहा हूं तो कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है। यदि मैंने इसको अभी 2 मिनट पकड़ा फिर क्या होगा, वजन लगने लगेगा ना। 5 मिनट पकड़ के रखा, ज्यादा वजन लगने लगेगा। 10 मिनट, आधा घंटा, फिर क्या होगा, फिर दर्द शुरू होगा, फिर हाथ में दर्द होगा। 1 घंटा, 2 घंटे बस पकड़ के रहे, फिर क्या होगा, हाथ सुन्न हो जाएगा, फिर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, फिर ये गिर भी जाएगा हाथ से। तो ऐसे अध्यापक ने छात्रों को बताया। तो छात्र सोच रहे थे इसका क्या मतलब है, तात्पर्य क्या है इसका। तो उन्होंने कहा, देखो इसका क्या वजन बढ़ा, जब मैंने इस ग्लास को उठाया जितना वजन पहले था बाद में भी उतना ही वजन रहा उसका। ऐसा नहीं कि जैसे मैं उसको हाथ में पकड़ रहा था कि उसका वजन बढ़ते रहा, बढ़ते तो बढ़ नहीं गया ना उसका, पानी जितना पहले था उतना ही था। लेकिन मुझे भारी क्यों लगने लगा पहले, जा बाद में, पहले जब पकड़ा तो भारी नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे पकड़ता रहा फिर भारी लगने लगा, और आधे घंटे बाद तो इतना भारी लगने लगा कि हाथ ही सुन्न हो गया और दर्द करने लगा बहुत सा। तो ऐसे क्यों, जब वजन उतना ही है, वजन नहीं बढ़ा तो दर्द क्यों बढ़ा और बाद में वो हाथ सुन्न क्यों हो गया, क्या उत्तर है इसका। थकाव, जैसे जैसे हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं भले वो ऐसे प्रतीत होता है कि इसका वजन बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हालांकि बढ़ा हुआ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि अरे कितना भारी हो गया, पकड़ा नहीं जा रहा है, छोड़ दो इसको। उसी तरह से हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, थोड़े चिंता करते हैं, वो चिंता उस समय रहती है, ज्यादा भारी नहीं होती, इतना वजन नहीं होता है उस चिंता का, कोई छोटी मोटी समस्या होती है, इसने हमसे ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, इसने ऐसा हो गया। लेकिन क्या करते हैं हम, चिंता को छोड़ देते हैं क्या, चिंता को भूल जाते हैं, क्या करते हैं, वो चिंता को पकड़ के रखते हैं। दो मिनट, पांच मिनट, आधा घंटा, एक दिन, एक महीना, पांच साल, दस साल, कभी कभी इस जीवन भर याद रखते हैं, फिर क्या होता है? वो चिंता का वजन ऐसे प्रतीत होता है कि वो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फिर असहनीय हो जाता है, फिर तरह तरह के समस्या होने लगती है, यहां तक कि व्यक्ति पागल भी हो जाता है, फिर मनोचिकित्सक के पास में जाना पड़ता है गोली लेने के लिए, इलाज कराने के लिए, उदास हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम इन चिंताओं को पकड़ के रख रहे हैं, हमारे मन में छोड़ नहीं रहे हैं। क्यों हम पकड़ के रख रहे हैं, क्यों नहीं छोड़ रहे हैं इन चिंताओं को? क्योंकि हमारी शारीरिक भावना, इस संसार से हमारा जो संबंध है उसके प्रति बहुत गहरा लगाव है, क्योंकि हम अपने आप को कर्ता समझ रहे हैं और हमारे शरीर को ही स्वयं हम मान रहे हैं। आत्मा है हम और हम भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, भगवान श्री कृष्ण ही परम नियंता हैं, इसके बारे में हमें उतनी श्रद्धा नहीं है कि भगवान जो सही करेंगे वो करेंगे, वो सही करेंगे, हमारे जीवन को वो नियंत्रित रखेंगे, इस बात की श्रद्धा नहीं है, इसलिए हम चिंता करते हैं। परंतु चिंता को कैसे कम किया जाए? केवल चिंता को पकड़ के रखने से नहीं। जब हम भगवान श्री कृष्ण के वाणी को सुनते हैं, उनके पवित्र नामों का उच्चारण करते रहते हैं, बार बार सतत कृष्ण नाम को लेते रहने से, बार 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवत को पढ़ते रहने से और सुनते रहने से, इनके बारे में चिंतन मनन करते रहने से हमारा मन शांत होने लगता है। फिर चिंताएं आती हैं जाती हैं, हम ज्यादा देर उन चिंताओं को पकड़ के नहीं रखते, चाहे कोई भक्त हो या न हो, चिंताएं आएंगी, लेकिन चिंताओं को पकड़ के रखने से ज्यादा कष्ट होता है। तो चिंताओं को छोड़ने की क्षमता कैसी मिलेगी हमें? जब हम ज्यादा हरि नाम का आश्रय लेंगे, जब हम समय समय पर प्रतिदिन जितना हो सके गीता भागवत का पठन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, तब हमारा मन जो है हल्का हो जाएगा, हमारी श्रद्धा बढ़ जाएगी कि भगवान ही रक्षा करेंगे, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं? रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान ऐसे आश्वासन बार बार देते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक में तो भगवान कहते ही हैं, मा शुचः, डरो नहीं, जगह जगह ऐसे भगवान कहते हैं। 16वें अध्याय में भी भगवान कृष्ण अर्जुन को ऐसे ही कहते हैं, मा शुचः अर्जुन, कि तुम बिल्कुल डरो नहीं। और उसी तरह से इस श्लोक में भी, न त्वं शोचितुम अर्हसि, शोक करना, चिंता करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है हे अर्जुन। और इसके पहले भी दूसरे अध्याय में भगवान कह चुके हैं श्री कृष्ण, अशोचान अनुशोचस्त्वं प्रज्ञा वादांश भाषसे गतासु न गतासु नाम शोचन्ति पंडिता, कि जो बीत चुका है और जो है उनके बारे में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। जो पंडित व्यक्ति है, जो वास्तव में विद्वान है, वो इन चीजों के बारे में शोक नहीं करता है। तो न अनुशोचन्ति, कि नहीं शोक करना, या फिर इस श्लोक में जैसे है, न त्वं शोचितुम अर्हसि, बार बार ऐसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं करो, चिंता नहीं करो, डरो नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान से, भगवान की भक्ति से ये जो मानसिक स्थिति है उसको हम प्राप्त कर पाएंगे। तो आप कहेंगे, हम तो भक्ति कर रहे हैं फिर भी चिंताएं आती हैं। हाँ, लेकिन जितने तीव्रता से हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेंगे, हम अनुभव करेंगे कि हमारा मन शांत होने लगता है और चिंताओं से हम मुक्त होने लगते हैं। अब एक और बढ़िया बात आपको बताएं, जीवन का उद्देश्य क्या चिंताओं से मुक्त होना है? क्या लगता है आपको जीवन का ध्येय क्या है? चिंताओं से मुक्त होना क्या ये जीवन का ध्येय है या नहीं? आप में से कितने भक्त मानते हैं कि जीवन का ध्येय चिंताओं से मुक्त होना है? हाथ ऊपर कीजिए। ठीक है, कितने भक्त मानते हैं कि नहीं, जीवन का उद्देश्य चिंताओं से मुक्त होना नहीं है? बहुत सारे भक्तों ने हाथ ही नहीं उठाया। तो फिर क्या है जीवन का उद्देश्य? चिंताओं से मुक्त नहीं होना है तो क्या चिंताओं को बढ़ाएं? जब हम कृष्ण के लिए सेवा करते हैं, कृष्ण के कार्य के लिए चिंता करते हैं, तो वो चिंता परिपूर्ण है। तो भक्ति मार्ग में हमें क्या सिखलाया जाता है? चिंता ग्रस्त जीवन से चिंता मुक्त जीवन, और चिंता मुक्त से फिर से चिंता ग्रस्त जीवन। परंतु ये चिंताग्रस्त जीवन और उस चिंताग्रस्त जीवन में बहुत अंतर है। यहां पे हम अपने लिए चिंता कर रहे हैं, वहां पे हम कृष्ण की सेवा के लिए चिंता कर रहे हैं कि कैसे अन्यों तक कृष्ण भक्ति पहुंचाया जाए, कैसे मंदिर की और भलाई हो, कैसे हमारा जप और अच्छा बने, कैसे और हम सेवा करें अच्छी तरह से, कैसे और प्रचार को बढ़ाएं, कैसे जो आंदोलन की समस्याएं हैं उनको मिटाएं, ये चिंता। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि भक्ति करते समय जो चिंताएं आती हैं भगवान की सेवा को और बढ़ाने के लिए, वो चिंताएं भक्तों का दिव्य आनंद है। इसका मतलब नहीं कि जानबूझ के कोई चीज गलत ढंग से करे ताकि चिंताएं हो और फिर कहिए मेरा आनंद है, ऐसा नहीं। अच्छे ढंग से करना चाहिए कार्यों को, बुद्धि जितनी भगवान ने बुद्धि दी है उसका प्रयोग करना चाहिए, हमारा पूर्ण बल का प्रयोग करना चाहिए, हमारी जितनी भी योग्यता है, बुद्धि है, सब कुछ अच्छे ढंग से बड़े सावधानी से करनी चाहिए सेवा, और उसके बाद फिर कुछ हो जाता है जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, तो फिर उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जाए, ये सोचना चाहिए। ये है श्री चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन, ये है प्रहलाद महाराज का भाव। प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं? प्रायेण देव मनोयो स्व विमुक्ति कामा मौनम चरंति न विजने परार्थ निष्ठा। वो कहते हैं कि हे भगवान, हे श्री नरसिंहदेव, ऐसे जगत में बहुत सारे साधु और तपस्वी वैरागी आदि हैं जो जगह जगह घूमते हैं, विचरण करते हैं, कभी हिमालय में, कभी यहां वहां अकेले में एकांत स्थान में कभी रहते हैं, कोई लोग मौन व्रत का पालन करते हैं। क्यों करते हैं? केवल वो अपने मुक्ति की कामी है, मुक्ति कामी है वो, अन्यों का नहीं सोचते। न पर अर्थ निष्ठा, पर अर्थात अन्य, अर्थ अर्थात भलाई, तो अन्यों की भलाई कैसी हो इसका विचार नहीं करते हैं, बस अपनी मुक्ति हो जाए, हम चिंता से मुक्त हो जाएं, हम कष्ट से मुक्त हो जाएं, बस ये हमारा उद्देश्य है, ऐसा मानते हैं। परंतु मैं ऐसा वैरागी नहीं हूं, मैं शोक करता हूं, शोचे ततो विमुख चेत स इंद्रियार्थ। मैं उन लोगों के लिए शोक करता हूं, चिंता करता हूं जो कि भक्ति में नहीं है, जो आपके विमुख हो गए हैं, उनका उद्धार कैसे हो जाए, वो कैसे आपके चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके, इसके बारे में मैं चिंता करता हूं। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो हिमालय में बैठने वाले योगी होते हैं उनको कभी सरदर्द वगैरह नहीं होता है लेकिन प्रभुपाद कहते थे मुझे कितने सरदर्द है, क्योंकि उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, ये संस्था स्थापित की थी, सारे सब नए नए तरुण तरुणियां थी वहां पे, और वो भी विदेशों में जिनको कोई संस्कृति नहीं थी पहले, अब ये भक्त बने। अब तरह तरह की समस्याएं आई, जो लोग भक्त बने उनके रिश्तेदार उनको पागल समझने लगे, कभी कभी मानसिक रोग के चिकित्सकों को बुलाने लगे, उनको बंद कर दे लगे, कभी पुलिस आते थे उनको रोकते थे, कभी सरकार से कुछ विघ्न आते थे, कभी कभी भक्तों के बीच में कुछ हो जाता था, कभी आर्थिक समस्या हो जाती थी, कितने सारे समस्याएं। कितने कम समय में प्रभुपाद जी ने आंदोलन को इतना ज्यादा बढ़ाया, और फिर भी याद रखिए प्रभुपाद जी को पुस्तकों का वितरण करना था, उनका अनुवाद करना था, भाषांतर तात्पर्य आदि लिखते थे, रात को 12 बजे उठ के वो लिखना शुरू करते थे क्योंकि दिन में समय ही नहीं मिलता था। कहां आज यहां दुनिया के इस कोने में, कल दुनिया के उस कोने में, यहां वहां प्रवचन दे रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लिखने का समय कब। फिर भी उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना की, और कितनी सारी समस्याएं। तो भक्ति का मतलब केवल ये नहीं है कि हम अपने मन के शांति के लिए कोई काम करें। एक बार एक व्यक्ति, नए व्यक्ति आए थे मंदिर में, हम एक भक्त के साथ बात कर रहे थे, तो उनसे बात करने लगे, तो फिर वो व्यक्ति ने कहा यहाँ आके कितने मन की शांति होती है, भक्ति में आगे बढ़िए मन की शांति भंग हो जाएगी, फिर आपको अन्यों के ईर्ष्या में ऐसा मत बोलो भाई, नया आदमी है, पहले तो निश्चिंत अवस्था को प्राप्त करने दो उसको, पहले ये दिव्य आनंद को अनुभव करने दो, समझने दो कि भक्ति क्या है। पहले से ही बताओगे कि भगवान के लिए चिंता ले लो तो फिर कौन आएगा भक्ति में। तो पहले जब हम आते हैं, अवश्य ये हम सुनते हैं कि चिंता से मुक्त होते हैं, परंतु याद रखिए भक्ति में जितना हम आगे बढ़ेंगे चिंताएं अवश्य होंगी, परंतु अंदर, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया है, एक रस का आस्वादन भी होगा, एक दिव्य आनंद का अनुभव भी होगा अवश्य हमें। जितना हम भगवान के शरण में ज्यादा तीव्रता से जाएंगे इसका अनुभव हम कर पाएंगे, और भगवान के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होने के कारण हम जानेंगे कि चिंता तो है, हम प्रयास तो कर रहे हैं, अंततः हम भगवान के ऊपर निर्भर हैं। तो तीन अवस्थाएं हैं, पहली अवस्था कौन सी है, चिंता ग्रस्त अवस्था, जिसमें हम भगवत विहीन रहते हैं, भगवान की चेतना में नहीं रहते हैं, भक्ति का कुछ ज्ञान नहीं, भगवान का कुछ ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं है, केवल संसार में चित्त हमारा भ्रमण करते रहता है। और दूसरा आगे आगे चल के जब हम ज्ञान हमें मिल जाता है, हम सोचते हैं ये सब अनावश्यक जो कार्य है उनको छोड़ दो, इनको छोड़ने से ही, ज्ञान प्राप्त करने से इतना सुख मिलता है, चिंता अपने आप चली जाती है। और फिर धीरे धीरे जैसे हम भक्ति की गहराई में आगे जाते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है ये केवल मेरे बारे, मेरे विषय की बात नहीं है, केवल मेरे सुख के लिए, मेरे मन की शांति के लिए नहीं कार्य करना है मुझे, मुझे अब सोचना है अन्यों के बारे में, जो मुझे ये अनमोल धन मिला है भक्ति का, कैसे ये सब तक पहुंचाया जा सके। तो इस भाव का अनुशीलन हम सबको करना है, और ये हम जितने भी बड़े बड़े भगवान के भक्त हुए हैं हम देखेंगे उनके जीवन में कितने चिंताएं थी। ब्रजवासियों के जीवन में देखिए एक दिन भी शांति का जीवन नहीं था, एक दिन भी ऐसा नहीं था जबकि कोई असुर नहीं आया वृंदावन में कृष्ण को मारने के लिए, हंगामा करके चले जाता था असुर, और कृष्ण उसको आसानी से मार डालते थे। फिर जब मार डालते थे तो सारे ब्रजवासी केवल उस लीला का कथन करते थे, श्रवण कीर्तन करते थे, दिव्य आनंद का अनुभव करते थे। कृष्ण के बारे में इतनी चिंता होती थी उनको कि जगह जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण करते रहते थे। जब गोकुल में प्रकट हुए, मथुरा से गोकुल आए, फिर गोकुल में जब बाल लीलाएं की, शीघ्र ही वहां पूतना शकटासुर इत्यादि आ रहे थे। इसलिए नंद महाराज ने अन्य ब्रजवासियों के साथ में विचार विमर्श करने के बाद ये ठीक समझा कि हम वृंदावन चले जाएंगे। तो गोकुल छोड़कर वो यमुना के तट पे उत्तर की दिशा में चले, फिर यमुना पार किया, फिर से दक्षिण की भाग में चलते चलते आए और वृंदावन में रहे। आज जहां वृंदावन नगरी है ना, नगर पालिका, वहां पर उस स्थान में आ गए। और फिर वहां से आगे से भी और वहां खतरे होने लगे तो नंदग्राम की ओर चले गए। तो नंद महाराज पहले नंदग्राम में रहा करते थे, अब पूरा चक्र समाप्त हुआ, वो फिर से नंदग्राम में आ गए। और जब नंदग्राम में रहते थे श्री कृष्ण, उस समय फिर अक्रूर आए और उनको मथुरा ले गए। तो ब्रजवासियों के जीवन में चिंताएं बहुत सारी थी, लेकिन अपने अंतःकरण में दिव्य आनंद भी बहुत था उनको। उसी तरह से प्रहलाद के जीवन में देखिए कितने सारे कष्ट आए, पांडवों के जीवन में क्या कोई कम चिंताएं थी? हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हमारे जीवन में ऐसी चिंताएं हो तो हमारा क्या होगा। फिर भी पांडवों के जीवन में भगवान श्री कृष्ण का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा। और ये याद रखिए, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि अर्जुन श्री कृष्ण का साथ इस भौतिक जगत में सतत देते हैं। जब श्री कृष्ण इस ब्रह्मांड को छोड़कर दूसरी ब्रह्मांड में जब लीला करने जाते हैं तो अर्जुन भी उनके साथ में जाते हैं। फिर उस ब्रह्मांड को छोड़कर तीसरे ब्रह्मांड में जाते हैं, वहां भी अर्जुन साथ में जाते हैं। इस तरह से जहां भी भौतिक सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं लीला करने के लिए, अर्जुन उनके साथ में होते हैं। और हर एक बार चिंता लेकिन भगवान की सेवा का अनमोल अवसर अर्जुन को मिलता है, भगवान की भक्ति का स्वाद करने को मिलता है। इसलिए जब हम लोग अभी भक्ति कर रहे हैं तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल ये मेरे बारे में है। नहीं, हाँ, अपनी साधना तो अवश्य करनी है। हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो अन्यों का कैसे रखेंगे? इसलिए हमें अपनी साधना ठीक से करनी चाहिए, हरि नाम का जप और कीर्तन अच्छी तरह से करना चाहिए, प्रतिदिन गीता भागवत का पठन करना चाहिए, जितना हो सके भक्तों के संग में आके श्रवण करना चाहिए। फिर न केवल हमारी चिंता कम हो जाएगी, परंतु अन्यों की चिंताओं को कम करने की जो भावना है वो हमारे जीवन में विकसित होगी। फिर भगवान हमारे ऊपर वास्तव में प्रसन्न होंगे। आप सोचेंगे क्या प्रवचन हो रहा है ये, हमको मंदिर में आते मन की शांति के लिए हमको बताया जा रहा है कि चिंता कम करने के बजाय बढ़ाओ चिंता है। लेकिन ऐसे प्रयास करते रहने से जीवन का आनंद भी बढ़ जाएगा। इसके बिना जीवन हमारा व्यर्थ है। केवल स्वार्थ के लिए जो व्यक्ति जीता है उसका जीवन व्यर्थ है। तो हम सबको अपने जीवन को वास्तव में मूल्यवान बनाना है। मूल्यवान कब होगा? जब हमारा जीवन अन्यों के लिए मूल्यवान होगा कृष्ण भावनामृत में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। प्रश्न है? ठीक है।
हरे कृष्ण महाराज जी, एक शुद्ध भक्त या जो शुद्ध भक्त नहीं भी बना है, भक्ति के मार्ग में है और अगर भगवान की कृपावश वो प्रयास करता है कि इस जगत में ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति मार्ग से जुड़े, और ऐसे वक्त में अगर उसे कुछ सफलता मिलती है या सफलता नहीं मिलती है तो उसे उस स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए या शोक करना चाहिए कि हाँ उसे असफलता मिली
प्रचार में।
प्रचार में
हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। जितनी बुद्धि भगवान ने हमें दी है, जितनी क्षमता दी है, हमें पूरा प्रयास करना चाहिए। परंतु हमें जानना चाहिए कि इस प्रयास का फल ये भगवान के हाथ में है। तो प्रयास करना हमारे हाथ में, फल देना भगवान के हाथ में। तो जब हम प्रचार करते हैं, सेवा करने जाते हैं, किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में बताने जाते हैं, हमारे संदेश को वो सुने या न सुने वो हमारे हाथ में पूरी तरह से नहीं है। थोड़ा बहुत है, यदि हमने उस व्यक्ति के साथ अच्छी तरह से व्यवहार किया तो उसका भाव अनुकूल रहेगा। हमने ठीक से व्यवहार नहीं किया तो फिर वो भक्ति से और दूर चले जाएगा। इसलिए थोड़े हद तक हमारे हाथ में है कि हम किस तरह से बर्ताव करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, कैसा उदाहरण उसके सामने हम रखते हैं, किस तरह से उसको समझाते हैं, तो ये सब हमारे हाथ में है। तो जितना हो सके हमारे बुद्धि और योग्यता के अनुसार हमें अच्छे ढंग से करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। परंतु उसके बाद जो होता है फिर वो उसके और कृष्ण के बीच में है। फिर हमें आसक्त नहीं होना चाहिए। हाँ, हम भले विचार करें कि अरे ये व्यक्ति बहुत दिन से मंदिर आए नहीं, चलो उनसे बात करें कि आइए मंदिर, फिर से संपर्क में रहें हम, तो हो सकता है ऐसे संपर्क में रहने से पहले असफल रहे, धीरे 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 से सफलता आ सकती है, ऐसे भी हो सकता है। परंतु अंततः ये कृष्ण के हाथ में है। तो हमें जानना चाहिए कि जानबूझकर कभी कृष्ण हमें शत प्रतिशत सफलता नहीं देंगे बाह्य दृष्टि से। क्यों नहीं देंगे? हो सकता है हमारे हृदय में घमंड आ जाए कि देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूं, जिनको मैं कहता हूं बस वो भक्त बन जाते, मैं चिंता मणि हूं, जिनका स्पर्श करता हूं वो भी मणि बन जाते हैं, दिव्य मणि बन जाते हैं। तो कहीं हमारे मन में ऐसे घमंड ना आए, इसलिए कभी कभी भगवान हमें असफल भी कराते हैं ताकि हम नम्र रह जाएं, पहली बात, और दूसरी बात ये जान ले कि भक्त बनाने वाले व्यक्ति भगवान ही है। जब तक भगवान जो कि उस सामने वाले व्यक्ति के हृदय में बैठे हैं वो उसके हृदय को परिवर्तित नहीं करते, तब तक हमारा कार्य निष्फल रहेगा। प्रचार करना, सेवा करना, भगवान के संतुष्टि के को ध्यान में रखते हुए करना, बुद्धि दिमाग सब लगा के ठीक से करना, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी भगवान के हाथ में, फिर जो है उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो हमारी निरासक्तता प्रयास में नहीं होना चाहिए, फल की अपेक्षा में होना चाहिए। और जब फल नहीं आए तो यह भी हमारा कर्तव्य बनता है कि ये विचार करें कि क्या हमारी कोई गलती हुई उसमें, क्या हम और अच्छे ढंग से उनसे बात कर सकते थे तो हो सकता है कि वो भक्ति में आ सकते थे, ये भी हमें विचार करना चाहिए। ठीक है? और किसी ने, हाँ, चिंता के बारे में तो होंगे सवाल बहुत सारे निश्चित। हाँ, एक माइक आ रहा है, एक मिनट।
हरे कृष्ण। इस श्लोक में बताया गया है कि जो जन्म लेगा वो मृत्यु को प्राप्त होगा, तो मृत्यु को प्राप्त हो, जो मृत्यु को प्राप्त होगा उसे भी जन्म लेना पड़ता है,
तो जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं उनका भी पुनर्जन्म होगा परंतु भगवान के धाम में होगा, और वहां जो जन्म होगा उस जन्म के लिए मृत्यु नहीं है। ये श्लोक वहां के लिए नहीं है, ये श्लोक यहां के लिए है, भौतिक जगत के लिए है। तो वहां पे जो जन्म लेंगे आध्यात्मिक शरीर मिलेगा, तो आध्यात्मिक शरीर तो इस भौतिक शरीर की तरह नश्वर नहीं है, तो शुद्ध भक्त को भी एक आध्यात्मिक शरीर का पुनर्जन्म मिलेगा, लेकिन उसके बाद और कोई जन्म नहीं।
आपने बताया कि चिंता से दूर होने के लिए हमें हरिनाम का
लेना चाहिए,
हरिनाम लेना चाहिए और गीता भगवत का पाठ करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि हम ये सब करते हैं फिर भी चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं और क्रोध आ जाता है, तो इससे
जोर से जप करो। प्रभुपाद ने एक बार बताया भक्त को एक बार कि जब बहुत चिंता होती है, बहुत तनाव होता है, एक जगह बैठो, जोर से जप करो। वास्तव में ये काम करेगा दवाई, देखो आप इस प्रयास करके देखो। आप सब अगली बार जब बहुत ज्यादा चिंता हो जाएगी ना किसी चीज में, एक जगह बैठो और जोर से जप करो, फिर देखो कितना फर्क पड़ता है, तुरंत वो चिंता उड़ के भाग जाए, बहुत जल्दी इसका असर दिखने में आता है। ठीक है, प्रश्न है हम, ठीक है।
प्रचार के संबंध में कह रहे थे पहले प्रश्न में, तो कई बार जब हमारा प्रचार सफल नहीं होता है या हम किसी को प्रेरणा देने का प्रयास कर रहे हैं, हम देखते हैं वो अपने रुचि नहीं ले रहे हैं, तो कई बार हताश होकर हम उन पे ही दोष लगाने लग जाते हैं कि आप इंटरेस्ट नहीं लेते, आप इंटरेस्टेड है नहीं वास्तव में, और बाद में पता समझ में आता है कि शायद हम ही ठीक से कर नहीं रहे थे। तो प्रचारक को अपने प्रचार करने के तरीके में सुधार में मतलब एक दिमाग लगाना चाहिए या उन पे दोष लगाना चाहिए कि आप ही इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं।
बिल्कुल दिमाग लगाना चाहिए कि हम कहाँ गलत थे, कि हमारे इसमें कोई सुधार हम कर सकते हैं क्या, और फिर अच्छी तरह से करना और फिर निराशक्त रहना, ये समझना कि जितने भी हम बुद्धि लगाएं, सब कुछ करें, ख्याल से करें, सही बात करें, सब कुछ, फिर भी कोई निश्चितता नहीं है कि सामने वाला भक्त बन जाएगा। लेकिन आप बीज बो रहे हैं, बीज बोएंगे आज नहीं तो कल वो अंकुरित होगा, आगे चल के भक्ति लता प्रकट होगी उसके हृदय में, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो आने वाले जन्म में।
महाराज जैसे अलग अलग लोगों का एक अलग अलग स्पीड होता है आगे बढ़ने का, कभी कभी